ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عليه الصلاة والتسليم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے عزیز و بھائیو، دوست اور بزرگوں، یہ سارا کہنا سننا سمجھنا سمجھانا اسی لیے ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق جینا آ جائے. ابھی اکثر مجمع اللہ کی مرضی پر جینے پر نہیں ہے، تو پھر کون سے جینے پر ہے؟ کا بہت بڑا مجمع اپنے جی کی چاہتوں پر جینے پر ہے، کہ جی کی چاہت میں جو آتا ہے آدمی ایسا کرتا ہے. مثال کے طور پر بھائی، ابھی ہم سب کو قریب بلایا گیا ہے کہ مجمع میں قریب آ جاؤ، تو حق تو مجلس کا یہ تھا کہ مجلس میں آ کر آدمی بیٹھے، اور جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ نہ چھوڑنا، یہ جی کی چاہت ہے. اب جی کی چاہت میں آدمی وہ ساری خیر سے محروم ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر مجلس میں اگر آدمی بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کو گھیرتے ہیں، تو فرشتوں کے ماحول میں آ جائے گا. مثال کے طور پر مجلس میں آ کر بیٹھتا ہے تو یہ اس کی طلب ہے، طلب کہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے یہ قریب آیا، اس کے اندر طلب ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے اللہ طلب والوں کو دیتے ہیں، تو یہ لوگ محرومی سے بچ جاتے ہیں. اور اگر ہمارے اندر طلب نہیں ہے تو بہت ساری خیر آئے گی، ہمارے اندر طلب نہیں ہوگی تو وہ ہمیں نہیں ملے گی. یہ تو ایک مثال ہوئی کہ ایسے زندگی کے بہت سارے شعبوں میں آدمی جی کی چاہتوں پر ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم جی کی چاہتوں پر زندگی گزار رہے ہیں. جو آدمی اس جی کی چاہتوں پر ہوتا ہے اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام صلی اللہ فرما رہے ہیں، کیا آپ کو میں وہ لوگ بتاؤں کہ جنہوں نے اپنا معبود اپنی جی کی چاہتوں کو بنا دیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے من کے بندے ہیں، وہ میرے بندے نہیں، اپنے من کے بندے ہیں، اپنے جی کے بندے ہیں. افرائیت من اتخذ الہہو ہوا، اے نبی جی میں ان کو بتاؤں کہ جنہوں نے اپنا معبود اپنی جی کی چاہتوں کو بنا لیا ہے. اللہ ان کو اپنا بندہ کہنے کو بھی تیار نہیں کہ وہ اپنے نفس کے بندے ہیں. اور جب آدمی جی کی چاہتوں پر چلتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کہ وہ شیطان ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے جسم کو آپ سجدہ کرو، تو اس نے کیا کہا؟ ایک تو اللہ کا حکم تھا اور ایک اس کے جی کی چاہت تھی. اس کی جی کی چاہت یہ تھی کہ بھائی میں نہ کروں، اور اس کی دلیل دی کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے برتری والا ہوں، میں اس سے بڑا ہوا ہوں. اس کے من میں جو آیا وہ ہو کے اس نے کہ وہ اپنے من کی بات ماننے میں وہ شیطان بن گیا، اللہ کی نگاہ سے گر گیا. یہ جتنی محنتیں ہو رہی ہے وہ ساری یہ محنت ہو رہی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ بن کر جینے والا بن جائے، اللہ کا بندہ بن کر جیے. اللہ کا بندہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا بندہ اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو باندھ دیا ہو. اللہ کا بندہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو باندھنا سیکھ لے، باندھنا سیکھ لے، وہ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے امر پر، نبی علیہ السلام کے طریقے پر اپنے آپ کو باندھنا سیکھ لے. کہ جس نے سیکھ لیا وہ اللہ کا بندہ ہے، جس نے نہیں سیکھا تو وہ پتہ نہیں کس کا بندہ ہوگا. اسی لیے ہمارے دین میں بندھنے کا عمل ہے، بندھنا، اپنے آپ کو باندھنا سیکھے. ہمارا پورا دین دو چیزوں کے بیچ میں چلتا ہے. اللہ پاک نے آنکھ دی تو ایک حکم دیا کہ ان آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھنی ہیں، دوسری بات یہ چیزیں نہیں دیکھنی. کہ جو چیزیں دیکھنے کی ہیں وہ دیکھنے کا عادی بن گیا تو یہ بند گیا، اور نہیں بنا تو یہ نہیں بن رہا ہے. یہ زبان اللہ نے دی، اس میں حکم دیا کہ یہ چیزیں بولنی ہیں. جو چیزیں بولنے کی ہیں وہ بولنے کا عادی ہوا اور اس نے اپنے آپ پر لگام ڈالی، تو یہ بندھنا سیکھ لیا اس نے. اور جس نے اس کے اوپر لگام نہیں ڈالی، یہ چاہے کیسے بھی لباس میں ہوں لیکن یہ آزاد ہے. اللہ پاک نے یہ دماغ دیا، یہ کان دیا، सोचने के हुक्म दिया, क्या सोचे सोची जाएगी, कानों से क्या चीज सुनी जाएगी। अल्लाह पाक ने हथियार दिए तो इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, ये हुक्म दिया। जो अपने आप को इनका पाबंद बनाना सीख लेगा उसने अपने आप को बांधना सीख लिया, और जिन्होंने ये चीजें नहीं सीखी वो बंदा अभी बंधा नहीं है, वो आजाद है, आजाद पंछी। तो उसका नुकसान उसको क्या होगा, तो उसका नुकसान अगर कोई बंधता है तो नफा क्या होगा, और नहीं बंधता तो उसका नुकसान क्या होगा। कि जो बंधे हुए हैं, बंधे हुए ये मुसलमान है, मुसलमान मानने वाला होता है। इस्लाम का तर्जुमा ये होता है इनकियाद, आदमी अपने आप को झुका दिया अल्लाह के अमर के सामने, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने आप को झुका दिया। ये इस्लाम वाला है, ये ईमान वाला है कि अपने आप को उसने झुका दिया अल्लाह के अमर के सामने। जो झुका देगा उसको, जो अल्लाह के सामने अपने आप को झुका दे, ये अल्लाह का पैदा किया हुआ है, ये अल्लाह का लाडला हो जाता है, अल्लाह का चहीदा हो जाता है, अल्लाह का पसंदीदा बंदा हो जाता है, अल्लाह को इससे प्यार आ जाता है। और अल्लाह को ये पसंद हो गया तो कब अल्लाह पाक उसके उसको अपने रहम करम में ले लेते हैं, अपनी नुसरत में, अपनी मदद में अल्लाह इसको ले लेते हैं। और अल्लाह का गैबी निज़ाम इसके साथ हो जाता है, अल्लाह की तायद इनके साथ हो जाती है, फिर अल्लाह पाक इनकी नुसरत करते हैं, अल्लाह इनकी मदद करते हैं। हाँ, ये कमजोर होंगे तो भी अल्लाह मदद करेंगे, असबाब नहीं होंगे तो भी अल्लाह मदद करेंगे, शक्लें टूटी हुई होगी तो भी अल्लाह की मदद के साये में ये लोग आ जाएंगे, जो जिस शक्ल में होंगे इस शक्ल में अल्लाह इनकी मदद करेंगे। और वो लोग जो अल्लाह की बात नहीं मान रहे, जी की चाहतों पर है, मनमानियों पर है, अगर उनकी मनमानी है तो क्या नुकसान होगा, अगर मनमानी पर है तो ये अल्लाह की निगाहों से गिर जाएंगे, और अल्लाह की निगाह से गिर गए तो फिर अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से लोग दूर हो जाएंगे। फिर वो कैसी भी शक्लों में होंगे अल्लाह के साथ वो इस तरह चलेंगे, फिर कैसी भी शक्लों में होंगे अल्लाह की निगाहों से गिर जाएंगे वो, अल्लाह अपनी नुसरत को, अपनी मदद को इनसे उठा लेगा। फिर अल्लाह पाक इनको अक्सरियत के साथ, कि उनका टोला है, मजमा है, अल्लाह इनको हरा देते हैं अपनी उनकी ताकत के साथ, अक्सरियत के साथ, तिजारतों के साथ, ताकत के साथ, जिन जिन शक्लों में वो हैं अल्लाह पाक इन्हें जहर करेंगे, अल्लाह इन्हें नाकाम करेंगे। और ये खाली बातें नहीं है, अगले लोगों के वाकयात अल्लाह ने कुरान में बयान किए, दोनों लोगों के, मानने वालों के भी बयान किए, न मानने वालों के भी कुरान में वाकयात बयान किए। अक्सरियत वालों के बयान किए कि अक्सरियत थी लेकिन नहीं मानते थे तो हमने उनको कैसे हलाक किया। अल्लाह ने मुल्क वालों के वाकयात बयान किए कि उनको हमने बड़ा मुल्क दिया था, फिरौन को अल्लाह ने बड़ा मुल्क दिया, ताकत दी, नमरूद को, कारून को अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी, बड़ा माल दिया, बड़ा खजाना दिया। शुएब अलैहिस्सलाम के कौम को अल्लाह पाक ने बड़ी तिजारत दी, बहुत बड़ी तिजारत उनको दी। कौम आद और कौम समूद को अल्लाह पाक ने बड़ी ताकत दी, पहाड़ों को अपने हाथों से यूं नाखून से कुरेद कर अपना घर बनाते थे, ये सारी चीजें दी। और फिर उनके अंदर नाफरमानी आई, इन चीजों पर वो भरोसा कर बैठे, जो अल्लाह ने दी थी उन्हीं चीजों पर उन्होंने एतमाद कर लिया। जब समझाने वालों ने इनको समझाया तो उनको बात समझ में नहीं आई, माल वालों ने कहा कि अल्लाह की अता थोड़ी है, ये तो हमने अपनी मेहनत से कमाया है, ऐसा बोल दिया। जिनको अल्लाह ने ताकत दी थी पहाड़ खोद कर अपना मकान बनाने की, उन्होंने दावा ये कर दिया कि हमसे ज्यादा कोई ताकत वाला है कोई। जब नबी ने इनको बात समझाई कि आप अल्लाह की बात मानो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अपनी जी की चाहतों से निकल जाओ वरना अल्लाह की पकड़ में आ जाओगे, अल्लाह बड़ी ताकत वाले हैं, उन्होंने क्या कहा, हमसे कोई ताकत वाला है कोई, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, ऐसा कह दिया। ये सब के वाकयात अल्लाह ने कुरान में बयान किए, इनकी ताकत के वाकयात, इनकी नेमतों के वाकयात बयान किए। फिर अल्लाह ने अपनी पकड़ के भी वाकयात बयान किए कि इन सारी चीजों में अल्लाह ने क्या, ये जो ताकत वाले थे अल्लाह ने उनको क्या क्या हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने इनके ऊपर अपनी हवा चलाई, तूफान चलाया, हवा का तूफान चलाया, थोड़ा सा सुराख हवा में से खोल दिया, सात रातें और आठ दिन, सब अलयालिन वसवानियत अय्याम, वो हवा उन पर जब चली तो उनको अपनी भमरी में ले लिया और इनको ऐसा पछाड़ कर फेंका कि अल्लाह कुरान में बयान फरमाते हैं कि तुम इनको देखो, फहल तरा लहुम मिन बाकिया, कि ये दावे करने वालों में से एक भी बचा है, उनको हमने पछाड़ कर गिरा दिया है। कैसे गिराया है, लंबे लंबे उनके जिस्म थे, कान्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया, कैसे हमने उनको गिरा दिया, जैसे खजूर के दरख्त गिर जाते हैं ऐसे हमने इनको गिरा दिया। अल्लाह ने इनके वाकयात बयान किए और अल्लाह ने मानने वालों के भी वाकयात बयान किए, कि जो लोग बात मानते हैं, फर्मा बरदारी पर आ जाते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, उनके क्या अल्लाह करते हैं कि उनके अलग अलग वाकियात बयान किया। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी तादाद के बीच में बचा लिया, बचने के असबाब भी अल्लाह ने मुहैया कर दिए। अल्लाह चाहता तो बगैर असबाब के भी बचा लेता, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसानों को समझाया, कश्ती बनाई, जमीन से पानी निकला, आसमान से पानी आया, और सबके बीच में अपने मानने वालों के साथ कश्ती में बिठा दिया और कश्ती को अल्लाह ने चलाया। जोधी पहाड़ पर जाकर टिका दी कश्ती को, अल्लाह ने बचाया। उन्हीं का बेटा नाफरमानी कर रहा था, अल्लाह पाक ने बेटे के वाक्य को बयान किया है कुरान में, कब्बा समझाना है बेटा हमारी कश्ती में आ जा, इन ना मानने वालों के सामने तू मत देख, इनकी बातों में मत आ। तो क्या कहने लगा, कोई बात नहीं, जब वो कह रहे हैं कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकेगा, अब्बा समझा रहे हैं, तो बेटा क्या कह रहा है, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, बच जाऊंगा, जो मुझे पानी से बचा लेगा, सारी इलाज वाली के मैं पहाड़ पर चढ़ूंगा तो मुझे बचा लेगा। अभी अब्बा समझा रहे हैं कि आज कोई नहीं बचेगा, अभी बातें हो रही है, इतने में एक मौज आई बीच में और बेटे को लेकर चली गई, के बचने वालों के वाकयात भी बयान किया अल्लाह ने, कुरान में बयान किया। ये सारे वाकयात बयान करने के बाद अल्लाह एक जुमला बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं कि इन वाकयात को पढ़ने वालों, इस वाकयात से तुम इबरत हासिल करो। फातबिरू या उलिल अबसार वातबिरू या उलिल अलबाब, क्या अकल रखने वालों तुम अकल से बात पढ़ो, इसको सोच देखना सुनना समझना। ये किस्सा कहानी नहीं है, अंबिया के जो वाकयात है वो किस्सा कहानी नहीं है, एक थी लैला एक था मजनू एक थे पोता एक थी मैना, ये वाकयात नहीं है। फिर ये कयामत तक के लिए उसूल हैं कि जो इन जो जो इस तरह की डगर पर रहेगा उसका ये नतीजा होगा, जो बात नहीं मानेगा उसका ये अंजाम होगा। ये कयामत तक के लोगों के लिए तरतीब बताई कि ये कयामत तक के लोगों के यही उसूल है कि जो बात मानेगा उनका ये अंजाम होगा, जो नहीं मानेगा उनका ये अंजाम होगा। ये चीजें नबी इंसानों को समझाते हैं। नबी अब दुनिया में नबी नहीं आएंगे, इसलिए नबी वाली नबी हमसे पर्दा फरमा गए, अब दुनिया में नहीं नबी आएंगे तो ये लोगों को कौन समझाएंगे। नबी वाली मेहनत हमारे बीच में है, नबियों वाली मेहनत, ये जो तबलीग की मेहनत है वो कौन सी मेहनत है, नबी वाली मेहनत। ये नबी वाली मेहनत के रास्ते से इंसान को वही बात समझाई जा रही है कि वो भले आदमी तो अल्लाह का बनाया हुआ है और तू बहुत कमजोर है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत कमजोर लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा हो जाए तो हम मर जाते हैं, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो जाए तो हम मर जाते हैं, थोड़ा बुखार हमको ढीला ढस कर देता है, क्या हुआ का जिसके ताकत टूट गई, थोड़ी सी सर्दी हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, सर में दर्द हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पेट में दर्द हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते, जिस्म में दर्द हो जाए हम कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह तआला ने फरमाते हैं इंसान को हमने कमजोर पैदा किया है, खुले कल इंसान दईफा, इसको अल्लाह ने बड़ा कमजोर बनाया है, और जो नेमतें हैं वो भी अल्लाह की दी हुई है। जो नेमत है, अगर कोई मालदार के घर में पैदा हुआ तो अल्लाह ने उसको मालदार के घर में पैदा किया, वरना उसको कोई फकीर के घर में भी अल्लाह पैदा कर सकता था। अगर अल्लाह पाक ने इसको खूबसूरती दी है तो अल्लाह ने दी है, माँ बाप ने थोड़ी दी है, ये दी हुई तो अल्लाह के लिए खूबसूरती है। अगर अल्लाह पाक ने इसको होशियार बनाया तो इसके दिमाग को तेज अल्लाह ने बनाया, वरना बहुत सारे लोगों को डोबे बनाए अल्लाह ने, बहुत सारे डोबे रह गए, तो दिमाग भी अल्लाह का दिया हुआ, खूबसूरती भी अल्लाह की दी हुई, होशियारी भी अल्लाह की दी हुई, मालदार के घर में पैदा होना वो भी अल्लाह का दिया हुआ, फिर कारोबार शुरू किया तो कारोबार चल पड़ा वो भी अल्लाह का देन है, वरना हमारे जैसे कारोबार मार्केट में बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे कारोबार ठप हो जाते हैं, बल्कि कारोबार में कर्जदार हो जाते हैं वो, तो ये सब अल्लाह की दी हुई नेमत है। एक तो अल्लाह ने कमजोर पैदा किया, दूसरा जो दिया हुआ है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है, और फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने खूबसूरत कवर जिस्म पर पहना दिया, वरना ये तो गंदा इंसान है, उसके पास अंदर गंदगी भरी हुई है। हम देखें अपनी हैसियत देखें, हर आदमी गौर करे कि मुझे अल्लाह पाक ने किससे बनाया, तो गंदे पानी से बनाया, गंदा पानी, हर आदमी को अल्लाह ने गंदे पानी से बनाया है, कि हमारा वजूद ही गंदगी से है, गंदे पानी से है। हम घमंड ना करें इसके लिए, ये हमें इन चीजों को सोचने का हुक्म दिया है, ताकि कोई घमंड ना करे, ये सारी चीजों पर गौर करें कि सारी चीजें ठीक है अल्लाह ने दी है, तो घमंड काहे को करने का, अल्लाह पाक ने गंदगी से पैदा किया और अल्लाह पाक ने हमको शऊर बाद में दिया, बेशऊर हमको पैदा किया। क्या मतलब शऊर का, अल्लाह पाक ने फरमाते हैं कि हमने इंसानों के अलावा जितने मखलूक पैदा की सबको सूझबूझ दी, खलकहुम थुम्मा हदाहुम, कि जितने बंदों को पैदा करते हैं अल्लाह, मखलूक को पैदा करते हैं अल्लाह, उनको समझ देते हैं और इंसानों को अल्लाह पाक समझ बाद में देते हैं। हमारा बच्चा पैदा हो और हमारे अलावा और जितने मखलूक है उनके बच्चे पैदा हों, बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? हमारा बच्चा पैदा हो तो हमारे बच्चे के साथ गंदगी होती है, उसकी सफाई करनी होती है, फिर सफाई के बाद वो बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता, उसकी माँ को ने वो भी नहीं पता होता है, पता होता है। अच्छा, भैंस का बच्चा पैदा हो फिर उसके बाद उसको कौन समझाता है कि तेरी माँ कौन है? कोई उड़खड़ कराता है? अरे बोलो भाई, तो वो थोड़ी देर में अपनी माँ को पहचान लेता है कि मेरी माँ ये है। चिड़िया के बच्चे को उसको पता हो जाता है कि मेरी अम्मी कौन सी है, बिल्ली के बच्चे को पता है कि मेरी माँ कौन सी है, इंसान के बच्चे को पता होता है, माँ को भी पता होता है मेरा बच्चा कौन सा है। दूसरी भैंस का बच्चा दूध पीने आएगा तो भैंस पीने देगी दूध? अरे बोलो भाई, पीने देगी। तो उसको किसने समझाया? तो उसको अल्लाह ने समझाया कि तेरा बच्चा ये है। बच्चे को अल्लाह ने समझाया कि तेरी माँ ये है। हमारे बच्चे दो अगर साथ कर दे तो माँ पहचान लेगी, दो की डिलीवरी हुई, दो खातून की, और बच्चे का पता नहीं है, डॉक्टर ने मिला दिए, तब समझ निकालेगी कि मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा ये है, निकाल देगा, उसका बाबा निकाल देगा। ना बाबा निकाल सकता है ना माँ निकाल सकती है। जानवरों के सारी माएं पहचान दे हमारे बच्चे कौन से हैं, और सारे जानवर पहचान दे हमारी माएं कौन सी है। ये किसने समझ दिए? अल्लाह ने दिए। बच्चे के पैदा होने के बाद उसको दूध कहां से पीना? भैंस के बच्चे को कौन सिखाने जाता है कि तुझे दूध कहां से पीना? हमारे बच्चे को अगर माँ उठावे नहीं और छाती से न लगाए वो दूध पी सकता है? अरे बोलो भाई, पी सकता है। हर जानवर के बच्चों को उसकी माँ दूध पिलाती है। कहां से दूध पीना वो भैंस के बच्चे को कौन समझाता है? अल्लाह समझाते हैं। अल्लाह ने उनको सिखाया हुआ पैदा किया है, तुमको पता है यहां से दूध पीना है। थोड़ी देर होती है वो चलना शुरू हो जाता है। हमारे बच्चे को चलना कितने साल में आता है? अरे बोलो भाई, खुद ही चलना शुरू कर देता है या चलना सिखाना पड़ता है? अरे बोलो भाई, तो हमारे बच्चे को सिखाना पड़ता है। चिड़िया के बच्चे को कौन उड़ना सिखाता है? मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है? सांप के बच्चे को कौन रंगना सिखाता है? कसब सीखे हुए पैदा होता है। बस परिंदे कुएं के अंदर घोंसला बनाते हैं और कुएं में से सीधी उनको चलना होता है कुएं के मन पर, कुएं की जो दीवार बनी होती है वहां वश। तो ऐसा होता है एक बार, तो पहली बार निकले तो उड़ नहीं सके, कुएं में गिर गए, ऐसा होता है? अरे बोला ऐसा होता है। जिस दिन पहले दिन उड़ते हैं उस दिन भी सीधे जाते हैं। ये किसने सिखाया सारी की सारी चीजें? ये सारी चीजें अल्लाह के सिखाई हुई मखलूक है। हमारे बच्चों को सब सीखना पड़ता है, हमको सबको सीखना पड़ता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तुमको माओं के पेट से ऐसा पैदा किया कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम वा अंतुम ला तअलमून शैयन, कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं, सब सीखना पड़ेगा। हमको जाहिल पैदा किया और सारी मखलूक को सिखाया हुआ पैदा किया। उनके बच्चों को सब पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। भैंस के बच्चे को पता है कि क्या घास खानी है कि क्या खाना है। वो गोश्त खाता है कभी भूल से? अरे बोलो, भैंस का बच्चा कभी भूल से गोश्त खा लेगा? अच्छा, गोश्त खाने वाले जानवर कभी भूल से घास खा लेंगे ना? तो उनको पैदा इससे ही पता है। चिड़िया के बच्चे को पता है कि मुझे दाने चुगने हैं। चिड़िया के बच्चे को पता है कि मुझे दाने चुगने हैं। मछली के बच्चे को पता है हमें क्या खाना है? कि सारे जानवरों को पता है हमें क्या खाना है। इंसान के बच्चे को पता ही नहीं क्या खाना क्या नहीं खाना। वो पेशाब करता है और हाथ डालकर मुंह में डाल देता है, टट्टी करता है और उसमें हाथ डालकर मुंह में डाल देगा, उसके अंदर दौड़कर जाएगी और गंदगी कर रहा है। उसको नहीं पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो खा लेता है। बाहर धूल में बैठा तो धूल खा लेगा, कंकर में बैठा तो कंकर चबाने लगेगा, स्कूल जाएगा तो स्लेट पेन नाक में डाल देगा। बोला ऐसा होता ही नहीं होता। क्यों? इसको बेचारे को पता नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना। ये सब अल्लाह ने हमारी चीजें बयान की है। हम कमजोर है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम अल्लाह कुरान में कहते हैं ये कमजोर लोग हैं। फिर दूसरे अल्लाह ने हमारी चीजें बयान की, ये कैसे हैं कि ये जल्दबाज है, कि हर बातों में जल्दी करेंगे। और कैसे हैं कि झगड़ा हुए, थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़े। जानवर झगड़ा करते हैं हमारे जितना? अरे बोलो, जानवर हमारे जितना झगड़ा करते हैं भाई? तो ये तो समझ वाले हैं, अक्ल वाले हैं, फिर क्यों झगड़ते हैं? ये अल्लाह ने हमारे सारे ऐप बयान किए। हम ऐसे सारे लोग हैं। अगर हमको अल्लाह अपनी छत्र छाया में ना रखे, अपने रहमो करम में ना रखे, तो हम जी नहीं सकते। हाँ, हम जी नहीं सकते। ये तो अल्लाह का रहमो करम है कि आदमी सुकून से जी पा रहा है। हाँ, अल्लाह का रहम करम है, अल्लाह की दाद है, अल्लाह की दहिश है, अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने चला रहा है। अल्लाह ने हमारी ये सारी चीजें हमारे अंदर रखी है और हमको फिर उसके बाद जिस्म में गंदगियां भर दी, उस पर अल्लाह ने खूबसूरत गिलाफ पहना दिया, ये खूबसूरत गिलाफ पहना दिया। वरना आदमी एक दिन ब्रश नहीं करता उसके दांत में बू आती है, उसके कान में से गंदगी निकलती है, उसके 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 नाक में से गंदगी निकलती है, इसके पेशाब पहाने में गंदगी निकलती है, फिर ये घमंड कैसे करेगा? इसीलिए हुक्म दिया है कि कोई आदमी घमंड ना करे, अल्लाह से बंध जाए कि भाई तू घमंड क्यों करता है, तू पैर ठोकर क्यों चलता है, अल्लाह से बंध जा, अल्लाह की बात मान ले। ये सारी चीजों के बाद अल्लाह ने ये बात समझाई नबियों के रास्ते से कि इसमें अल्लाह की तो बात मान ले, इन सारी कमजोरियों में तू है, अगर अल्लाह से अल्लाह के साथ जुड़ गया तो अल्लाह की पूरी ताकत तेरे साथ हो जाएगी, कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसके हो जाएगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह लहु, जो अल्लाह का हो जाएगा अल्लाह उसका हो जाएगा, और अगर अल्लाह उसका हो गया तो फिर अल्लाह का जो कुछ है वो भी उसका हो जाएगा, अल्लाह के पास जो कुछ है वो भी किसका हो जाएगा। वो राजा ने अपने अपनी 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 खादिमाओं से कहा कि हमारे राजपाट में बहुत सारी चीजें हैं, जो जिसको पर हाथ रख दे वो उसका। तो कोई गई और किसी ने सोने पर हाथ रखा है, किसी ने चांदी पर, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। एक खादिमा थी वो वहीं की वहीं खड़ी रही, तो उसको कहा तुझे कुछ नहीं लेना, क्यों तुझे कोई चीज पर हाथ नहीं रखना, तुझे क्या राजा सलामत, मैं जिस पर हाथ रखूं वो मेरा हो जाएगा। कहा सबको इजाजत है, जो जिस पर भी हाथ रख दे वो उसका हो जाएगा। अच्छा जो जिस पर हाथ रख दे उसको दे दोगे? कजी दे देंगे। तो उसने चुपके से हाथ अपना राजा पर रख दिया। अपना हाथ किस पर रख दिया? तो भाई मेरा हाथ राजा पर, तो राजा मेरा, तो राजा का जो कुछ है वो भी मेरा। अंबिया ये इंसानों को समझाते हैं कि हम अल्लाह के हो जाए, अगर अल्लाह के हो गए फिर अल्लाह का जो कुछ है वो भी हमारा हो जाएगा। फिर अल्लाह पाक जब हो गया फिर अल्लाह पाक निजाम बदलेंगे, हमारी जमीनों में बरकत, हमारे कारोबार में बरकत, हमारी औलादों में बरकत, हमारी जिंदगियों में बरकत। हाँ, बरकत का मतलब कि अल्लाह पाक जो जिस काम के लिए अल्लाह ने बनाया है उससे वो नफे जाहिर होंगे, नफे औलादों से नफे जाहिर होंगे, बीवी से नफे जाहिर होंगे, तिजारतों से नफे जाहिर होंगे। अल्लाह पाक ने जो जो शक्लें बनाई है उससे अल्लाह नफा पहुंचाएंगे। हाँ, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि ऐसों की जिंदगी में जो बात नहीं मानेंगे इन्हीं चीजों में हम उनको परेशान करेंगे। मन आवाजान बिक्री फिर शन का, कि इनकी जिंदगियों में मसाइल खड़े करेंगे, हाँ अजीरन कर देंगे उनकी जिंदगी को। फिर बीवी है लेकिन बीवी होते हुए मसाइल खड़े हैं, बच्चे हैं लेकिन बच्चे ही मसला बने हुए हैं, दुकान मसला बनी हुई है, कारोबार मसला बना हुआ है। हाँ, लोगों से हम चलें फिर मिले बैठे पता चलता है कि कौन बेचारे किन किन मसलों में है। ये जो तबलीग की मेहनत है हमारे जहनों में क्या आता है, ये तबलीग वाले एक ही बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बस जाओ जमात में जाओ, निकलो जमात में निकलो, निकलो निकलो निकलो, यही बात करते हैं। तो ये बात नहीं है, ये निकालना तो इसलिए है ताकि ये सोच बदले, ये फिक्रें बदले, ये जज्बात बदले, ये सोच बदले, ये जीने के तरीके बदले, ये रहने के तरीके बदले। एक माहौल में ले जाते हैं चार चार महीने और चिल्लों में, ताकि चार माह में और चिल्लों में दो बातें हों। एक, इन बातों को रोजाना बोला जाए सुना जाए ताकि ये सोच बदले, फिक्रें बदले, जज्बात बदले और सही जीने की फिक्र जिंदगी में आ जाए। दूसरा का दूसरा दूसरा चार महीने और चिल्लों में एक माहौल में रहकर इन कामों के करने के आदि बन जाए। कि बहुत सारे काम देखकर होते हैं, आदमी गैरेज पर जाता है, गैरेज पर तो गैरेज का जो सेड होता है वो नौकर को नहीं सिखाता कि ये क्या करना है, वो देखते देखते सीख जाता है, वो देखते देखते इन चीजों को सीख लेता है। ड्राइवर आदमी कंडक्टर को नहीं सिखाता कि कैसे गाड़ी चलानी, वो माहौल में रहता है ड्राइविंग के, तो माहौल में रहते रहते इसको सीख जाता है। बोला ऐसा ही होता है या ड्राइवर सिखाता है? अरे बोलो भाई, तो खुद ही सीखता है कि ड्राइवर के साथ माहौल में रहा तो ड्राइविंग करना सीख लेता है, गैरेज वाले के साथ माहौल में रहा तो गैरेज को रिपेयरिंग करना वो सीख लेता है। ऐसे इन अमाल के माहौल में जब आदमी रहता है तो इन अमाल का आदि बन जाता है, इन अमाल का आदि। अभी देखो हम सब इज्तिमा में आए हैं तो सब एक 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 खास लिबास पहनकर आए, खास टोपी पहनकर आए, क्यों? कि माहौल था उसका, तो उस माहौल का असर हम पर भी होगा, कि आदमी पर माहौल असर करता है। अल्लाह के रास्तों में जो चार चार महीने चले ले जाते हैं ना, वो इन चीजों का आदि बनाने के लिए। फिर अगर इसके आदि हो गए फिर मजे हो जाएंगे। क्या मजे होंगे? कि इंशाल्लाह अगर ये जिंदगी मिल गई, अब इन अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने का हमें हुनर आ जाएगा, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के हमें सलीके आ जाएंगे, अल्लाह के रहम करम में हम आ जाएंगे। अल्लाह के हुक्म में क्या चीजें हैं? अल्लाह के हुक्म में हर मुसलमान को तीन चीजें सीखना है। कितनी चीजें बोलो? खुद अल्लाह का बंदा है तो अल्लाह का बंदा बनकर जीना सीखना है। एक बार हर आदमी अल्लाह का बंदा बनकर जीना सीखे। दूसरा उसको क्या सीखना है? कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती है तो इस पूरी उम्मत का हमदर्द बनकर वो जिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का खैरखा बनकर जिए। भाई एक बाप के तीन बेटे हैं तो हर बेटे का तकाजा ये होता है कि दूसरे भाइयों का हमदर्द बने। अगर वो अपने जीते जी भाइयों का हमदर्द नहीं बनता तो बाप की नजर में गिर जाता है कि कैसा बेटा है, वो भाई की फिक्र नहीं करता। समाज भी बुरा कहती है, लोग भी बुरा कहते हैं, बाप भी बुरा कहता है, माँ भी बुरा कहती है। तो अब हमारे नबी दुनिया में आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाले। तो हर उम्मती के जिम्मे ये है कि वो एक दूसरे का खैरखा बने, हर एक दूसरे का हमदर्द बने। क्या खैरखा बनना है? कि उसको उसको ऐसे जिंदगी सिखाए कि वो जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बने। ऐसी जिंदगी उसको सिखाए जो जो जिंदगी उसके ऊपर अल्लाह के रहम करम का मुस्तहिक उसको बना दे, अच्छी जिंदगी वाली उसको सूझ दे। हर एक एक दूसरे का हमदर्द बने। ये जो तबलीग की मेहनत है वो इसी हमदर्दी की मेहनत है कि हर आदमी एक दूसरे का हमदर्द बने, हर एक आदमी एक दूसरे का खैरखा बने। हाँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी जिम्मेदारी एक एक उम्मती को दी है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब हज्जतुल वदा में थे तो हज्जतुल वदा के आखिरी हज में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लोगों को कहा कि ये बताओ मैंने तुमको बात पहुंचा दी नहीं पहुंचा दी? तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपने बात पहुंचा दी, बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया। फिर क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया कि अब मैं तुम्हारे जिम्मे ये जिम्मेदारी करता हूँ कि तुम लोग अपने बाद वालों को ये बातें पहुंचाना। अला फलयबल्लिगु शाहिद मिनकुमुल गाइब, कि तुम ये बातें दूसरों को ये बातें पहुंचाना। ये सहाबा की जो जमात है इसी जिम्मेदारी को समझाने के लिए दुनिया में फैले सफर किया उन्होंने। सहाबा 1,25,000 थे। कितने सहाबा थे बोलो? 1,25,000। मक्का और मदीना में 10,000 से 12,000 की कब्रें हैं बस। कितने की कब्रें हैं बोलो? 10,000 से 12,000। वो सब दूसरे कहां चले गए? कई इसी जिम्मेदारी को लोगों को समझाने के लिए दुनिया में सफर किया उन्होंने। अब दुनिया में कहां कहां उनकी कब्रें बनी हुई है। तो ये हर एक ईमान वाले के जिम्मे जिम्मेदारी है। ये जो जिम्मेदारी पूरी करेगा उसको क्या मिलेगा? जो अल्लाह के नबी सलाम की उम्मत को समझाने की जिम्मेदारी पूरी करेगा वो अल्लाह के रहम करम में आएगा, अल्लाह की नुसरत में। क्योंकि क्योंकि हमारे नबी ने दुआ की है कि अल्लाह तो उसकी मदद कर जो मेरे दीन की मदद करे। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तो उसकी मदद कर जो मेरे दीन की मदद करे। अब जिसको नबी की दुआ लगेगी तो वो हालत में रह सकता है, तो वो हालत में नहीं रहेगा। कि अल्लाह के नबी सलाम की दुआएं इनको लगेगी। हमारे जिम्मे है अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की उम्मत का साथ देना, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की उम्मत का खैरखा बनना। ये दूसरी जिम्मेदारी। और आदमी अपना अपना जिंदगी गुजार ले तो ये ठीक नहीं है, उसको हर एक हमदर्द बनते हुए जीना है। तीसरी बात, अपने दीन का मददगार बनकर जीना है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हर ईमान वाला अपने दीन का मददगार बने। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कूनू अंसारल्लाह, हर ईमान वाला अल्लाह के दीन का मददगार बने। ये तीन जिम्मेदारियां, खुद अपनी जात से अल्लाह का बंदा बनकर जीना सीखे, हुजूर के उम्मती का हमदर्द बनकर जीना सीखे, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अल्लाह के दीन का हमदर्द, अल्लाह के दीन की नुसरत करने वाला बनकर जीना सीखे। ये तीन जिम्मेदारियां पूरी होगी फिर ये जिन हालात में होंगे अल्लाह खुशहाल कर देंगे। हाँ, अल्लाह मजदूरी में खुशहाली अल्लाह देंगे, बादशाहत में अल्लाह खुशहाली देंगे। ये जिंदगी सीखने से ताल्लुक रखती है। हाँ, हमारे दीन में अल्लाह वाला बनने के लिए ये नहीं कहते कि भाई तुम मलंग बन जाओ। मलंग होते हैं मलंग लोग, बीवी बच्चे सब छोड़ दें, तो मलंग बनना हमारे दीन में हराम है। सन्यासी बनना हराम है। हमारे वहां तो शादी भी होगी, बीवी बच्चे भी होंगे, कारोबार भी करेंगे, सब करना है। अल्लाह राजा बना दे तो राजा बनना है। हजरत उमर फारूक राजा थे और छोटी मोटी दुकान के राजा थे, आधी दुनिया के राजा थे। अबू बकर सिद्दीक राजा थे और हजरत उस्मान गनी बादशाह थे, हजरत अली मुर्तजा बादशाह थे। अगर अल्लाह इस उम्मत में किसी को बादशाह दे तो बादशाह से भी कोई बुरी बात नहीं, बादशाह अल्लाह की नेमत है। अगर अल्लाह किसी को मालदार बना दे तो मालदार बनना बुरा नहीं। अल्लाह ने बहुतों को मालदार बनाया, सहाबा को। तो सहाबा बड़े बड़े मालदार थे, बहुत बड़े बड़े मालदार। उनके जब माल आता था पूरा मदीना उनके माल से भर जाता था। और अगर अल्लाह किसी को गरीब रखे तो गरीब रहना भी बुरा नहीं। हजरत अली मजदूर आदमी थे, गरीब थे, लेकिन ये सारे अपने अपने लाइनों में ऐसे थे कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। तो हमारे दीन में किसी काम को छोड़ने को नहीं कहा गया। हम तो एक शादी करते हैं, वो तो कितने कितने करते थे बोलो? अरे बोलो कितने करते थे? चार चार करते थे। यहाँ किसी चीज को छोड़ने का हुक्म नहीं है। हम तो 2-4 बच्चे होते हैं। एक साहब फरमाते हैं मैं 150 बच्चे अपने हाथ से दफन कर चुका हूँ। कितने बोलो? 150 बच्चे अपने हाथ से दफन कर चुका। हाँ, हमारे दीन में कोई चीज छोड़ने का हुक्म नहीं, लेकिन उन चीजों में रहना कैसे वो सीखने का हुक्म है। भाई दरिया में जाना है, दरिया में जाने से कौन मना करता है, लेकिन दरिया में जाना सीख लो। सांप पकड़ना है कोई बात नहीं, सांप पकड़ो, लेकिन सांप पकड़ना सीख लो, सांप तुमको ना डस ले। दरिया में जाना है कोई बात नहीं, लेकिन तैरना सीख लो, वरना दरिया में डूब जाओगे। कि ये सब के दरमियान में कैसे रहना वो सीखने का नाम दीन है। जो आदमी ये चीजें सीख लेता है फिर वो दीन के साथ जीता है और दीन के साथ मरता है। कोई आदमी ये चीजें सीखे ही नहीं और फिर ये तमन्ना करे कि मैं दीन के साथ मरूं, भाई तेरे पास तो है ही नहीं, तो कैसे मरेगा तू इसके साथ? हजरत उमर फरमाते थे जो जैसा जिएगा ऐसा मरेगा, कमा तहयाउन तमुतून, कि तुम जैसा जियोगे ऐसे मरोगे, जो जैसा जिएगा ऐसे मरेगा। अंदर दीन में ईमान है इस्लाम और ये बात मानने की बातें होगी तो मौत के वक्त कलमा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, वो कलमा पड़ेगा। लेकिन अंदर है ही नहीं, तो धक्का मार गाड़ी कितनी चलेगी? फिर मौत के वक्त लोग धक्का देते हैं, कलमा पढ़ाएंगे तो भाई उसके पास तो है ही नहीं तो कैसे पढ़ेगा वो? तो 10-10 आदमी कलमा पढ़ाते हैं तो भी जरा पर कलमा नहीं आता, क्यों? क्या जिंदगी भर इस कलमे पर मेहनत नहीं हुई है, इस अच्छी जिंदगी पर मेहनत नहीं हुई, पता नहीं फिर कैसे कैसे लोग मर जाते हैं। अल्लाह हमें बुरी मौतों से बचाए। इसके लिए बात जो कही जा रही है कि मुसलमान को दो काम करना है, एक काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि जिंदगी को सीखना है, ये जिंदगी को, तिजारत में कैसे रहना, कारोबार में कैसे रहना, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना, घर वालों के साथ कैसे रहना, ये जिंदगी सीखनी है, ये अल्लाह के रास्ते में ले जाते हैं। इसीलिए हमने देखा, आप सब ने देखा कि जो आदमी घर में एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह के रास्ते में तहज्जुद भी पढ़ता है, भाई कैसे हो गया? कि इसने सीखा, इसको माहौल ने असर किया। जो आदमी एक आदमी का खाना नहीं बनाता था, वो 15 आदमी की खिदमत करता है जमात में, खाना बनाता है, अरे भाई ये कहां से आ गया? कि इसने अंदर जज्बा बना, इसने सीखा ये, तो अल्लाह के रास्तों में जाकर इसको सीखने को कहते हैं, पहली बात तो ये। फिर जब सीख कर आए तो फिर दूसरी बात यह है कि जिस माहौल में उसको रहना है वहां वो ऐसा माहौल बनाए तो वो टिका रहेगा, अगर उसको माहौल नहीं मिलेगा तो टिका रहेगा, अरे अगर माहौल नहीं मिला तो टिका रहेगा वो, का खत्म हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बोले ना हमारा बेटा 4 महीने जमात में गया था, 4 महीने, अब तो नमाज भी नहीं पढ़ता, ऐसा कहते हैं। क्या फायदा हुआ 4 महीने भेजने का? चिल्ला गया था, क्या फायदा हुआ? ओ भाई वो तो इसी बिगड़े हुए माहौल में से गया था, यहाँ एक भी नमाज नहीं पढ़ता था, जिस माहौल में ले गए थे वहां तहज्जुद गुजर वो तो बनकर आया था, और वहां तो 5 वक्त का नमाज ही बनकर आया था, फिर आने के बाद जो माहौल उसको दोबारा मिला वो माहौल ने उसको दोबारा खराब कर दिया, मानना वहां तो बुजुर्ग बनकर आया था, अच्छा बनकर आया था। भाई गाड़ी कंपनी में से निकलती है ना तो नवी गाड़ी कंपनी में से निकले, लेकिन जो हाईवे है वो हाईवे टूटा हुआ है, वहां पत्थर है, कांटे हैं, घड़े पड़े हुए हैं, तो बोलो वो गाड़ी चलेगी भाई? अरे बोलो गाड़ी चलेगी, लेकिन गाड़ी पुरानी है लेकिन हाईवे बहुत अच्छा है, तो बोलो गाड़ी क्या होगी? क्या गाड़ी चलेगी। ये बच्चा तो अच्छा बनकर आया था, घर का हाईवे टूटा हुआ, मोहल्ले का हाईवे टूटा हुआ, मस्जिद का हाईवे टूटा हुआ, समाज का हाईवे टूटा हुआ, सोसाइटी का हाईवे टूटा हुआ, वो गंदा माहौल है, घर में जा रहे हैं तो भी बेदीनी की बातें हैं, मस्जिद में अब तो मस्जिदें भी हमारी महफूज नहीं रही, बच्चे मोबाइल भी मस्जिद में खेलते हैं, अब तो पहले वहां लोग डरते थे अल्लाह के घर की बात करते हुए डरते थे, अब इतनी बेदीनी हो गई कि अब मस्जिद तो मस्जिद, हरम में भी लोग बेदीनी करते हैं, वहां भी मोबाइल से खेलते हैं, कि हमारे मस्जिद में भी वो माहौल अब तो नहीं मिलता, मोहल्ले में भी नहीं मिलता, आदमी ना सुनना चाहे वो बातें कानों में पड़ती है, जो बातें नहीं देखनी है वो आंखों में पड़ती है, अब ये बेचारा बचना भी चाहे तो भी मुश्किल हो गया, क्या हुआ? मोहल्ले का माहौल खराब हो गया, घर का माहौल, ये घर के 10 मेंबर हैं, 1-4 महीने जाकर आया, 9 तो ऐसे के ऐसे ही है, अब वो 9 के बीच में इस अकेले को रहना है, तो ये 9 गालिब आएंगे या अकेला गालिब आएगा? भाई 500 लीटर पानी की टंकी है, ठंडा पानी 500 लीटर है, उसमें 1 लीटर हमने गर्म गर्म पानी डाला तो क्या होगा 1 लीटर गर्म पानी का? अरे बोलो क्या होगा 500 लीटर में? ठंडा हो जाएगा। ये बेचारा एक गरम गरम आदमी तैयार होकर आया है 9 ठंडे लोगों में, अब 9 ठंडे लोग इसको कैसा कर देंगे, गरम कर देंगे या ठंडा कर देंगे? ठंडा कर देंगे, तो बेचारा कुछ दिन माहौल में रहता है, फिर ऐसा ऐसा इससे तबलीग छोड़ जाती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सलाम ने जैसे अपना माहौल बनाया ऐसे ईमान वाला अपना माहौल बनाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा जोरदार माहौल बनाया मदीना मुनव्वरा का कि मुनाफिक आदमी आता था, मुनाफिक वो आदमी आकर हुजूर के मदीने में नमाज पढ़ता था। हमने सुना है ना कि मुनाफिक की भी नमाज छोड़ने की हिम्मत नहीं होती थी। अब माहौल नहीं है तो मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में नहीं आता है, मस्जिद का पड़ोसी, हम एक जगह पर गए तो वहां के लोग कहने लगे कि हमारे वहां तो बच्चे रमजान के महीने में मस्जिद की सीढ़ी पर बैठकर शराब पीते हैं। लो अब क्या रह गया, तो माहौल नहीं है, और जब माहौल बनता है तो फिर सब लोग मस्जिद के बाहर वाले भी अंदर आते हैं, मुनाफिक भी आ जाते हैं। इसके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि माहौल बनाने के लिए, घर का, मोहल्ले का, मस्जिद का और अपने अतराफ का सब माहौल बनाने के लिए हर आदमी अपने मकाम पर 5 काम करे। कितने बोलो?
5।
अरे बोलो क्या काम करे, कितने करे?
5 काम।
सबसे पहले अपनी फिक्र करे, कि हर आदमी के जिम्मे अपनी फिक्र है, 5 कामों के जरिए अपना माहौल बनाए। अपनी फिक्र करने के लिए उसको कौन सा अमल है? अपनी फिक्र करने के लिए उसको रोजाना मस्जिद के मशवरे में बैठेंगे, कि रोजाना हर मस्जिद में मस्जिदवार जमात होती है, मस्जिदवार जमात, कि जमात में जाकर आए वो अपनी मस्जिद में बैठकर मस्जिदवार जमात बैठती है। ये मस्जिदवार जमात क्या है? तो वो रोजाना 2 बातें सोचती है, एक अपने अंदर दीन कैसे बाकी रहे और मोहल्ले वालों में सबके अंदर दीन कैसे आए उसको सोचती है। जब आदमी उसके अंदर बैठेगा तो गैर महसूस तरीके से उसकी फिक्रें दीनी फिक्रें बनेगी। बोलो कौन सी बनेगी? बोलो उसकी फिक्र कौन सी फिक्र बनेगी? का दीनी फिक्र बनेगी। और जब उसकी फिक्र दीनी हो गई तो दीनदार बन जाएगा। इसलिए कि किताबों में यू लिखा है कि आदमी अपनी फिक्रों के ताबे होता है। किसके ताबे होता है बोलो? आदमी की फिक्र उसके अमल की इमाम होती है। आदमी की फिक्र जैसी बन जाएगी ऐसे वो काम करता है। एक आदमी को घर बनाने की फिक्र आ गई, अब वो कुछ भी करके घर बनाने की कोशिश में लग जाएगा। एक आदमी को शादी की फिक्र आ गई, वो कुछ भी करके शादी करने की जुगाड़ करने लगेगा। एक आदमी को हज की फिक्र आ गई तो कुछ भी करके हज करने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि अपनी फिक्रों की हिफाजत करो। किसकी बोलो? अपने। कि तुम कौन सी फिक्रधारा के हो, तुम कौन सी विचारधारा के हो, तुम्हारी फिक्रें कौन सी है। साहबा की फिक्रें ये थी, दीनी फिक्रें थी कि उनके ऊपर ये था, तो बीवी बच्चों में, कारोबार में, सब जगह ये चीज गालिब उन पर रहती थी। तो आदमी के पास अगर ये चीज नहीं रही तो फिर वो जो विचारधारा का होगा ऐसे काम करेगा। इसलिए अपनी फिक्रों की हिफाजत करनी है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं रोजाना अगर ये मशवरे में बैठेगा, 5 मिनट का अमल रोजाना मस्जिद में होता है, अगर वो इसमें बैठेगा तो रोजाना दीन की, आखिरत की, जिम्मेदारी की बातें सुनेगा तो गैर महसूस तरीके से इसकी फिक्रें बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी बोलो? गैर महसूस तरीके से। तो हम सबको हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इसके साथ अपने आप को जोड़ना है ताकि हम भी इस्लामी फिक्रों पर, दीनी फिक्रों पर हम बाकी रहें। माशाल्लाह आप सारे का सारे इसमें रोज बैठते होंगे, लेकिन अगर सुस्ती होती है तो हम सब नियत करें कि हम तो इसी फिक्रों पर रहेंगे और इसी फिक्रों पर इंशाल्लाह हमें मरना भी है। भाई सब बैठोगे उसमें इंशाल्लाह? कौन कौन नियत करता है कि मैं अपनी मस्जिद के फिक्रों में बैठूंगा? माशाल्लाह। दूसरा काम क्या करोगे? जो फिक्रें हमने अपनी की वो अपने घर वालों की हमें करनी है। किसके करनी है बोलो? ये हुक्म हमारे नबी को भी अल्लाह ने दिया, कहे नबी अपनी भी फिक्र करो, अपने घर वालों की फिक्र करो। अल्लाह पाक ने हम सबको घर वालों का वडील बनाया है। हम घर वालों के सारे काम खुद करते हैं। हम घर के सारे काम, घर में वॉशिंग मशीन नहीं हम लाते हैं, घर में जूस मशीन हम लाते हैं, घर में एसी हम लाते हैं, सब्जी हम लाते हैं, सारी चीजें हम घर वालों की लाते हैं। तो घर वालों की दीनी फिक्र कौन करेगा? घर वालों की दीनी फिक्र मैं और आप करेंगे। हमारे नबी अलैहि सलाम की बात का मफहूम है कि हर बड़े से उनके छोटों का अल्लाह हिसाब लेंगे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही। हर बड़े से अल्लाह उनके छोटों का हिसाब लेंगे। हमारे मातहत अल्लाह ने उन सबको बनाया है। अल्लाह ने हमारे मातहत बनाया, अब वो सही बात पर है कि नहीं अल्लाह हमसे पूछेंगे। हमको अल्लाह कहेंगे तुमने इनको बात समझाई थी नहीं समझाई थी, और अगर समझाई तो हमारी आखिरत का जखीरा बनेंगे, और हमने समझाने में अगर कमी कर ली तो समझ लो बाजी हमारे हाथ से निकल जाएगी, बाजी गई हमारे हाथ से, हमारे बच्चे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमारे नबी अलैहि सलाम की बात का मफहूम है फजाइले सदकात में लिखा कि आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या तो उसके लिए जहन्नम है। हर आदमी की औलाद या तो उसके लिए जन्नत है या जहन्नम। अगर उसकी हमने फिक्र की और बात उसको समझा दी तो वो सही जिंदगी पर आ गया तो वो जन्नत बनेगा, और अगर बात नहीं समझाई गलत रुख पर चला गया वो जितने गलत कामों में जाएगा उसका जरिया मैं बना हूं, मैं उसके, वो मेरी औलाद मेरे लिए जहन्नम बनेगी। इसके लिए दूसरी बात जो है कि वो जो फिक्र हमने मस्जिद में से ली वो सबसे पहले अपने घर में लेकर जाना है। साहबा का ये तरीका था कि हुजूर की मस्जिद में जो बातें सुनते थे वो कहाँ लेकर जाते थे? घरों में लेकर जाते थे। आज हमारे घरों में अल्लाह रसूल के तस्करे खत्म हो गए। अल्लाह हमारे घर होटल बनते हैं, हम खाना खाते हैं होटल बनते हैं, हम सोते हैं हमारे घर लॉज बन जाते हैं, लेकिन हमारे घर मुसलमानों के घर नहीं बनते। हम सोचें सुबह से शाम तक हम अल्लाह रसूल की कितनी बातें करते हैं, हमारे घरों से अल्लाह रसूल की बातें खत्म हो गई। तस्करे देखो इतना बड़ा मजमा बैठा है, मैं पूछूं किसी को निकाह किए हुए 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, बराबर है? मैं सोचूं कि मैंने अपनी घरवाली को आप बैठा कर आखिरत की बात कब की थी? मैंने उसको बैठा कर कहा अल्लाह की बंदी देख तू मुझे नहीं जानती थी, मैं भी तुझे नहीं जानता था, एक कबूल की का रिश्ता अल्लाह पाक ने इस रिश्ते कबूल की के जुमले से मुझे और आपके साथ जिंदगी कर दी है, और मौत आएगी तो मुझे और तुझे अपनी मौत जुदा कर देगी, तो अपनी कब्र में सोएगी, मैं अपनी कब्र में सोऊंगा और ये हमारे बच्चे हमसे जुदा हो जाएंगे। हो सकता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर आदमी की औलाद उसके लिए जन्नत है या जहन्नम, अगर हमारी मेहनत नहीं हुई थी हमारी जहन्नम बनेगी, और मेहनत हो गई जन्नत बनेगी। ला मैं और आप फिक्र कर लें कि मेरी भी जन्नत बने, तेरी भी बने, और हमारी औलाद हमारी आंखों की ठंडक बने, उसके लिए हमें क्या क्या अमल करने हैं। हम सोचें कि हमने घर वालों से कितनी मरतबा मजाक रखी है। किसी को निकाह को 5 साल हो गए, 10 साल 15 साल 20 साल, हम मार्केट की सारी बातें घर में लेकर जाते हैं, सारी बातें घर वालों को सुनाते हैं, लेकिन घर वालों को अल्लाह रसूल की बात नहीं सुनाते, मस्जिद की बात नहीं सुनाते। बोलो सुनाते हैं? बहुत कम लोग हैं जो सुनाते हैं। तो हमारे घर सारी चीजों के हमारे घर में चर्चे होते हैं, घर चर्चे नहीं होते, अल्लाह रसूल के चर्चे नहीं होते। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं हर आदमी अपने घर वालों को टाइम दे। क्या दे बोलो? अपने घर वालों को क्या दे? टाइम दे। और घर वालों में सबसे पहली घरवाली है, घरवाली। अगर घरवाली को ये फिक्र दे दी तो उसके ताबे बच्चे होते हैं। बच्चे अक्सर किससे जुड़े हुए होते हैं? माँ से जुड़े होते हैं। जैसी घरवाली होगी घर के बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। हाँ, घरवाली को क्या कहते हैं? घरवाली। वो घर की वाली होती है, घर में उसी की चलती है। घर में औरतों की चलती है, तो घरवाली की अगर सोच बन गई तो सबकी बनेगी। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक मर्द बनेगा तो एक आदमी बनेगा, और एक औरत बनेगी तो एक कबीला बन जाएगा, एक एक फैमिली बन जाएगी। हजरत ऐसा फरमाते थे। और हजरत यूं कहते थे, एक मर्द का दीन उसके अकेले का दीन है, और एक औरत दीनदार बन गई तो एक औरत का दीनदार बनना पूरी फैमिली को दीनदार बना देगा। हाँ, इसलिए कि बच्चे जो है माँ की बोली बोलते हैं। किसकी बोली बोलते हैं बोलो? माँ की बोली। हम अपने किसी को पूछते हैं तुम्हारी भाषा कौन सी है, तो क्या पूछते हैं? भाई तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है, यही पूछते हैं? अरे बोलो, यही पूछते हैं? तो क्या पूछते हैं? मातृभाषा कौन सी है। कोई ऐसा पूछता है तुम्हारी पितृभाषा कौन सी है? क्यों? कि बच्चे माँ की बोली बोलते हैं। मदर टंग। कोई ऐसा पूछता है फादर टंग कौन सी है? अरे बोलो, कोई ऐसा पूछता है? फारसी में पूछते हैं तुम्हारी मादरी जबान। कोई ऐसा पूछता है पितरी जबान? बच्चे माँ की बोली बोलते हैं। माँ जैसी होगी ऐसे बच्चे बनेंगे। माँ को बुजुर्ग बनाना है, नेक बनाना है। बच्चे की शुरुआत उसके पेट से होती है, उसके पेट में बच्चा बनता है। ये उसकी डाई है, डाई बीबू छपाइयां होती है बच्चे की। ये पेट में हया है, हया वाली ढांचा है, उस बच्चे में हया आएगी। ये तकवे वाला है, बच्चे में तकवा आएगा। इसमें पाकी है, बच्चे में पाकी आएगी। जो है वो आएगा। अब एक बच्चा यहाँ बनावट हो रही है और उस माँ की आंखें गंदा देख रही है, उस माँ की कान गंदा सुन रहे हैं, उस माँ का दिमाग गंदा सोच रहा है, उस माँ की जबान गंदा बोल रही है, वो माँ बाजारों में टहलती है और उसके पेट में बच्चा भी बन रहा है, और अब्बा दुआ करता है, अल्लाह हमारी बीवी हमल से है, उम्मीद से है, अल्लाह उसमें जुनैद बगदादी पैदा कर दे, तो हो जाएगा वो जुनैद बगदादी। उसकी आंखें भी गलत देख रही है, जबान भी गलत बोल रही है, कान भी गलत सुन रहे हैं, सारा गलत ही गलत है। अब उसमें बच्चा बन रहा है, तो भाई वो तो टंकी है, जैसा टंकी में होगा, अल्लाह ने आसमान से पाक पानी उतारा, पर जिस टंकी में भरा उसमें चूहा मरा हुआ पड़ा था, और उसमें जो पाइपलाइन से पानी निकलेगा, पाक निकलेगा ना पाक निकलेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह पाक हर बच्चे को फितरत इस्लाम पर पैदा करते हैं। हदीस में आता है हर एक बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, लेकिन माँ बाप जैसे होते हैं बच्चे को ऐसा बना देते हैं। इसलिए बीवी को हम नजरअंदाज ना करें, उस पर हमारे घर की मदार है, पूरा घर उस पर मौकूफ है। इसलिए बीवी को दो काम कर रहे हैं, एक 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 उसको दीनी सोच बनाने की फिक्र करनी है, और दीनी सोच बनाने के लिए उसको मोहब्बत देनी है। हम अपने घर वालों को मोहब्बत नहीं देते भाई, वो जिंदगी का पहला रिश्ता है। सबसे पहला दुनिया में अगर कोई रिश्ता बना, वो मियां बीवी का रिश्ता बना है। भाई आदम के साथ कौन थी? हव्वा, उनके घर वाले थे। और आखिर तक जो रिश्ता दुनिया में बाकी रहेगा, वो मियां बीवी का रिश्ता बाकी रहेगा। जन्नत में वो दो साथ में जाएंगे। ये इतना जोरदार रिश्ता है, सबसे पहला भी वो बना और सबसे आखिर में भी वही रहेगा। हम उसी रिश्ते के साथ रोज झगड़ा करते हैं। हम उसके रिश्ते के साथ क्या करते हैं बोलो? रोज झगड़ा करते हैं। उसी के साथ हम सीधे नहीं रहते, बाकी सबके साथ सीधे रहते हैं। इसके साथ इतना अच्छा रहो, उससे मेरी नस्ल चलेगी, मेरी औलाद उसी से चलनी है, हमारी नस्ल उसी से बनेगी। अब जिससे नस्ल बननी है उसी से हम रोज बवाल करते हैं, तब वो बवाल वाली औलाद पैदा होती है, फिर वो भी बवाल करती है, तो उसके साथ हमें अच्छा मामला। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अपने घर वालों के साथ अच्छे अखलाक के साथ रहो, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आने वाला आदमी हूँ। अपने अपने बच्चे अपनी घरवाली के साथ नरमी के साथ पेश आना। फिर घर में बच्चे हो जाएं तो बच्चों को दीनी माहौल देने के लिए बच्चों को अदब के साथ बरतना। हमारे नबी अलैहि सलाम की बात का मफहूम है कि अहसनो, अपने बच्चों को अदब सिखाओ और अपने बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाओ। ये तालीम दी कि बच्चों को कोई चीज देनी है तो बाय ऑर्डर नहीं होना, ए ये कर ले, ठीक है, जितने दिन वो दबा हुआ इतने दिन दबा रहेगा, फिर जब दबने में खत्म हो जाएगा तो हमें आगे दिखाएगा, तो उसे हमें क्या करना है? कब प्यार मोहब्बत से लो। हमारे नबी अलैहिस्सलाम अपने घर के बच्चों को प्यार मोहब्बत से लेते थे। हजरत जैद उनके गुलाम, क्या मैंने 10 साल अपने नबी की खिदमत की, 10 साल, एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया तो मुझे ये कहा हो क्यों किया, और एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ मैंने कुछ नहीं किया तो ऐसा कहो क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ कि इतने प्यार मोहब्बत से लेते थे। क्या किताबों में आता है, जो चीज नरमी से दी जाती है वो सख्ती से नहीं मिलती, नरमी से जो चीज दी जाएगी वो चीज सख्ती से नहीं ले सकते। इसलिए नरमी के साथ बच्चों को देना, बच्चों को अपना बनाकर ये चीज देनी है। उसके लिए क्या करना, घर में टाइम दो, घर में टाइम देना। हम सबको टाइम देते हैं, घर वालों को टाइम नहीं देते, और घर में टाइम देकर ये फजाइल की जो किताबें हैं, फजाइल अमल फजाइल सदकात, ये पढ़नी है। क्यों? ये जो फजल अमल और फजल सबकात की किताबें हैं, ये खाली तबलीग की किताबें नहीं, हम क्या समझते हैं तबलीग की किताब है, ये ईमान वाले की जिंदगी बनाने की किताब है। इसमें हजरत शेख ने सब सलाम की जिंदगी, मुसलमानों की जिंदगी लिखी, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाक, ये दिन के 5 शोबे, 5 शोबों उसमें लिखे।
जब इसमें पहला हिस्सा है हिकायत साहबा, मुसलमान मर्द कैसे होते हैं, मुसलमान औरतें कैसी होती है, मुसलमान बच्चे कैसे होते हैं और साहबा का कारोबार कैसा था, लोगों के साथ का बर्ताव, एक एक भाग अलग अलग लिखा है। जब हमारे बच्चे इसको सुनेंगे ना, इन्हें पता चलेगा अच्छा ऐसा होता है मुसलमान। ये सारी बातें सीखने की है। जब इसको पढ़ा जाएगा 5 मिनट 10 मिनट जब इसको पढ़ा जाएगा तो पूरा घर पूरे घर की फिजा बदल जाएगी। इसलिए दूसरी जिम्मेदारी है कि हर आदमी अपने घर में तालीम करे और अल्लाह हिम्मत दे मौका बमौका 6 नंबरों का मुजाकरा हमारे बच्चे से 6 नंबर बोलवाओ। 6 नंबर क्या है, कहीं ईमान नमाज, फिर उसके बाद इल्मो दिकर इकराम मुस्लिम इखलास से नियत और तफरीक वक्त। अब ईमान हमारा 4 साल का बच्चा बोले, ईमान में क्या बुलवाते हैं, आप सब जमात में गए हो तो जमात में बुलवाते हैं कि भाई कलमे से बात चली जाती है, हमारे दिलों का गलत यकीन निकल जाए और सही यकीन आ जाए। क्या गलत यकीन क्या है, चीजों से होता है, सही यकीन क्या है, एक अल्लाह से होता है। ओहो हमारा 4 साल का मुन्ना बोलता है, क्या बोलता है, मखलूक से नहीं होता अल्लाह करते हैं, चीजों से नहीं होता अल्लाह कर। अरे भैया कौन बोलता है, कि हमारा 4 साल का मुन्ना बोलता है, हमारी 4 साल की मुन्नी बोलती है कि अल्लाह नबी के तरीकों पर कम है। अब 4 साल से जो मुन्नी ऐसा बोलती हो तो सच बताओ कैसी मुजरिक बन जाएगी। इसलिए मौका बमौका 6 सिफत का मुदागरा। इसलिए सब नियत करो, हम अपने घर को टाइम देंगे और इंशाल्लाह घर में जमकर तालीम करेंगे। कौन कौन नियत करता है, दूसरा जो तालीम हम अपनी मस्जिद घर में कर रहे हैं यही तालीम मोहल्ले वालों को सुनानी है। इसलिए अपनी मस्जिदों में किसी नाइट नमाज के बाद जब तालीम हो हम अपनी सांस से उस तालीम को सुने और मोहल्ले वालों को भी सबको बैठने की इसमें तरगीब दें। क्यों, कि जो हमारी सोच बनी हमारे जज्बात बने एक एक मोहल्ले वाले के बनने चाहिए, एक एक मोहल्ले वाले के, एक एक मोहल्ले वाले के बनेंगे उनके जज्बात सोच फिक्र अच्छी हो जाएगी तो फिर मोहल्ले में भी इसकी फिजा बनेगी। इसलिए एक घर की तालीम और एक मस्जिद की तालीम, कौन सी तालीम बोलो, कितनी तालीमें हो गई, 2 तालीम, एक घर की तालीम और एक मस्जिद की तालीम। खुद भी बैठना है, सारे दोस्तों को बिठाना है ताकि सब ये ईमानी और आखिरत की जिंदगी सीखें और इस जिंदगी पर आए। तो कौन कौन नियत करता है कि हम दोनों तालीम में बैठेंगे, माशाल्लाह ये 2 काम हो गए, एक रोजाना का मशवरा, एक घर और मस्जिद की तालीम। तीसरा काम रोजाना क्या करना है, का तीसरा काम रोजाना ये करना है कि मुसलमान बेचारा बहुत सारा मोहल्ले में है उनको इन बातों का पता नहीं है, उनकी फिक्र कौन करे, तो उनकी फिक्र मुझे और आपको करनी है। तो उनके लिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं रोजाना 2.5 घंटे अपने वक्त में से फारिग करो। कितने घंटे बोलो, 2.5 घंटे। हम 2.5 घंटे कहां से लाएंगे, हम तो बहुत मशगूल लोग हैं। लोगों कहते हैं भाई 2.5 घंटे बाद करो तो हम तो बहुत मशगूल हैं, लेकिन ये धोखा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम सबके पास वक्त है लेकिन वो वक्त का हमें पता नहीं है। अच्छा भाई बताओ आमतौर से तुम्हारे वलसाड़ जिले में लोग कितने घंटे कारोबार करते हैं, अरे बोलो कितने घंटे कारोबार करते हैं जी, 8 घंटे। चलो भाई 8 घंटे गिन लो भाई, चलो 8 घंटे कारोबार के हो गए, ठीक है। आराम कितने घंटे लोग करते हैं, अरे बोलो भाई 6 घंटे, और चलो 6 घंटे आराम के गिन लो, चलो 8 घंटे आराम के गिन लो, 8 घंटे आराम के 8 घंटे कारोबार के कितने हो गए, अभी 24 घंटे में से कितने घंटे बचे हैं, 8 घंटे। मैं आपसे पूछता हूँ ये 8 घंटे कहाँ जाते हैं ये बताओ, मैंने कारोबार में से 1 मिनट कम नहीं किया, और सोने के ये 6 घंटे कह रहे थे मैंने उसमें 2 घंटे बढ़ा दिए, कितने कर दिए, 8 घंटे आराम के, 8 घंटे सोने के, कारोबार के 16 हो गए, फिर भी 8 घंटे बचे हैं। ये 8 घंटे हम रोजाना कहाँ देते हैं, कहाँ देते हैं हमें नहीं पता हम कहाँ देते हैं, मैं बताऊँ कहाँ देते हैं, दोस्त मिल गया उसे कंधे पर हाथ रखकर बातें करने खड़े हो गए, बातें करते करते आधा घंटा, चाय की चाल लाड़ी पर दोस्त मिल गए चाय की चुस्की लगाते लगाते आधा घंटा, सुबह चाय पीने अम्मी के साथ बैठ गए बातों बातों में आधा घंटा, चाय दस्तरखान खाने पर बैठ गए बातें बातों में 15 मिनट का खाना आधा घंटा, यूं ही हमारे घंटों के घंटे निकल जाते हैं। बोलो ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, और अब मोबाइल आ गया, मोबाइल हमारा बहुत वक्त खा जाता है, बोलो खा जा रहा है नहीं खा रहा है, हमारा सारा वक्त इसमें चला जाए। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं क्या करो भाई रोजाना 2.5 घंटे मस्जिद को दो, मस्जिद को, हम मस्जिद वाले हैं, हम मस्जिद वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए वक्त फारिग करें, अल्लाह के नबी सलाम की उम्मत के खैरखा बने। अगर हम अल्लाह के नबी सलाम की उम्मत के खैरखा और हमदर्द बने कल कयामत के दिन हमारे नबी की खैरखाई हमें मिल जाएगी, हमारे नबी की खैरखाई मिलेगी, हमारे नबी सलाम कल कयामत के दिन सिफारिशी बनने वाले हैं, सिफारिश करेंगे तो हमें अल्लाह के नबी सलाम की सिफारिश मिल जाए। अरे भाई हमारा बच्चा कहीं खो गया हो कोई ढूंढ कर ले आए, हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है, मेरा खोया हुआ बच्चा हमको लाकर मिला दिया, हमारी अम्मी खो गई हो, हमारी बहन बीवी खो गई हो, कोई ढूंढ कर ले आए, हमारा हैया ठंडा हो जाता है कि हमारा खोया हुआ आदमी लाकर ढूंढ कर मिला दे। हमारा जानवर खो जाए, भैंस खो जाए, कोई लाकर मिला दे, हमारा कलेजा ठंडा हो जाता है कि हमारा जानवर मिल गया। ये हुजूर की उम्मत खो गई है, पता नहीं हुजूर की उम्मत कहाँ कहाँ है, पता नहीं कैसे कैसे अड्डों पर है। अगर हमने थोड़ा सा वक्त फर्ज किया, उनकी जाकर खुशामद कर ली और उनको यहाँ लेकर आ गए, तो अल्लाह के नबी सलम कल कयामत के दिन उनका कलेजा ठंडा हो जाएगा, उनके हाथ से जाम कौसर पिलाएंगे, उनके झंडे के नीचे जगह मिलेगी। तो भाई हम तो सब चाहते हैं कि हमको अल्लाह के नबी सलम के झंडे के नीचे जगह मिले और उनके हाथ से जाम कौसर मिले। जो ये चाहता है तो फिर हमें नियत करनी होगी कि भाई मैं अल्लाह के नबी सलम राजी हो ऐसे काम करूंगा। तो अल्लाह के नबी सलम की उम्मत का हमदर्द बनना है, तो बनोगे हमदर्द इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करता है कि हम बनेंगे? इसके लिए रोजाना सबको वक्त देते हो, कारोबार के हो कारोबार को देते हो, अम्मी के हो अम्मी को देते हो, अब्बा के हो अब्बा को देते हो, भाई बहनों के हो उनको देते हो, दोस्तों के हो उनको देते हो। तब अल्लाह और उसके रसूल के भी है, अल्लाह रसूल को भी इंशाल्लाह टाइम देंगे। कौन कौन नियत करता है अल्लाह रसूल को टाइम देंगे? तो सब नियत करो रोजाना 2.5 घंटे फारिग करेंगे। कितने घंटे बोलो? अरे भाई 2.5 घंटे आप लोग जानते हो 2.5 घंटे किसे कहते हैं जी? 2.5 घंटे किसको कहते हैं? 2 घंटे जी, आधा घंटा 29 मिनट और 60 सेकंड, 29 मिनट और 60, 1 सेकंड भी 2.5 घंटे में कम नहीं करेंगे। तुम इतना पक्का नियत करोगे तो पक्का दे सकोगे, कच्ची नियत करोगे कच्चे हो जाओगे। तो सब ये कहते हो कि इंशाल्लाह पक्के 2.5 घंटे देंगे, और कैसा करो कि जब मुलाकातों में जाओ, मस्जिद में साथी होते हैं उनके साथ मिलकर मोहल्लों में मुलाकातों में जाओ। जब तुम मोहल्लों में चलोगे फिरोगे ना, तो तुम्हारे चलने फिरने से अल्लाह मोहल्लों की बेदीनी खत्म कर देंगे। हाँ, जब तुम चलोगे फिरोगे, जब हम नहीं चलेंगे तो दूसरी चीजें मोहल्ले में चलेगी। हाँ, हम अपनी मस्जिद में थे तो हम मोहल्ले में गए, एक जमात शाम को आई, सुबह में उन्होंने कारोबारी सुनाई, लोग मोहल्ले में चलना फिरना अभी बंद हो गया है, क्या करते हैं कि बाजार में मिल लिए, दुकानों पर मिल लिए, खेत पर जाकर मिल लिए। ना, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं 2.5 घंटे में घर में जाकर मिलो, उसके घर में बैठ कर मिलो, घर में बैठ कर बात करो। क्यों? कि तुम जिस आदमी से बात करोगे घर में, वो एक अकेला आदमी नहीं, उसके 8-7 फैमिली में उसकी बीवी है, अम्मी है, अब्बा है, उसके 2-3 भाई होंगे। तुम एक से बात करोगे, बेचारा हो सकता है वो अकेला घर में बात लेकर जाए, उसकी बात का इतना वजन ना हो, घर में बात पूरी पहुंचेगी नहीं। तुम ऐसा करो, घर में बैठकर बात करो, घर में बैठकर बात करोगे, तुम्हारी बात घर के सारे मर्दों तक पहुंचेगी। फिर औरतें भी घर में होगी, वो भी चुपके चुपके सुनती है, उन तक भी बात पहुंच जाएगी। हमें घर में औरतों को सुनाना नहीं है, भाई आ जाओ हमारी बात सुनो, ये तो बेपर लगी हो जाएगी, और फितरों का जमाना है। लेकिन औरतों की फितरत ये होती है कि जब घर में अगर कोई बैठता है ना, तो वो चुपके चुपके सुनती है कि क्या बात कर रहे हैं हमारे हाजी साहब के साथ, तो उसको भी दिन की बात सुनने मिल जाएगी। बोलो होगा नहीं होगा? और अगर नहीं सुनने मिली होगी तो जैसे ही वो हाजी साहब बात करके जाएंगे ना, तो हजम पूछेगी क्यों आए थे, क्या बात कर रहे थे, बोलो पूछती है नहीं पूछती औरतें? तो जब वो पूछेगी तो हमें बात करने का मौका मिलेगा। इसलिए बाजार में खड़े खड़े बातें नहीं कर रही, दुकानों पर नहीं, बल्कि कहां जाकर मुलाकातें करनी है, घर पे जाकर बात करो, बैठकर बात करो, तो पूरे घर वालों को हमारी बात पहुंचेगी। फिर क्या होगा, जब ये सिलसिला मोहल्ले में शुरू होगा ना, तो बेदीनी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, मोहल्लों की बेदीनी। हमारे आमतौर से पहले बुजुर्ग लोग थे, वो घरों में आकर मुलाकातें करते थे, अब हमने ये चीजें छोड़ दी। हमारी मस्जिद में एक जमात मुलाकातों में से आई, कहने लगे मौलाना आज 3 फायदे हुए। मैंने कहा क्या फायदे हुए? कि जब हम मोहल्लों में पहले तो जाते नहीं थे, बाजारों में मुलाकात करते थे, आज घर पर गए ना तो हमने देखा कुछ औरतें ओटले पर बैठी थी, हमको देखते ही घर में चली गई, ये बेदीनी थी, अंदर चलना फिरना शुरू किया, बेदीनी खत्म हुई। फिर कहने लगे कि कुछ लड़कियां फुल रैकेट खेलती थी, जवान जवान, अब जवान बच्चे फुल रैकेट खेले कूदे कैसा बुरा दिखे, हमको देखते ही वो छोड़कर चली गई, ये दूसरी बुराई खत्म हुई। फिर तीसरा कहने लगे और मोहल्ले के कुछ जवान थे जो हमारे वहां बाइक लेकर खड़े थे मोहल्ले में, हमको जैसी देखा बाइक स्टार्ट की और चले गए। ये जब हम मोहल्लों में चलेंगे फिरेंगे तो मोहल्लों की बेदीनी खत्म हो जाएगी। इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह हम 2.5 घंटे फारिग करेंगे और ईमान वालों के घर पर जाकर ईमान वालों से बात करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करता है? 3 काम हो गए, बोलो कितने काम हो गए? 1 रोजाना का मशवरा, रोजाना की 2 तालीम और रोजाना के 2.5 घंटे करोगे इंशाल्लाह। 4th काम जो आपको करना है वो हफ्ते में करना है, कब करना है बोलो? ये 3 काम रोजाना, 4th काम हफ्ते में। अगर 2 गश्त करो, एक अपने मोहल्ले की मस्जिद का गश्त करो, एक अपने पड़ोस के मोहल्ले की मस्जिद का गश्त करो। क्यों? कि अब हमने सबको अलग अलग मुलाकातें की थी, अठवाड़े में हफ्ते में एक मरतबा पूरे मोहल्ले वालों को जमा करो, और मोहल्ले वाले जमा हो जाएं तो इस मसले को गंभीरता से संजीदगी से इनके सामने रखो कि भाई हमारे मोहल्ले का ये मसला है कि हमारे मोहल्ले में 100% दीन कैसे जिंदा हो जाए, और उसके नफे सुनाओ कि अगर मोहल्ले में दीनदारी जिंदा नहीं हुई तो हमें कितना नुकसान होगा। इस बेदीनी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ से सब लोग दीन सीखने जाने चाहिए। इसके लिए 4 महीने की जमाते हैं, चिल्लों की जमाते हैं, 3 दिन की जमाते हैं, उसकी तश्कीलें करनी है। हमारी फिक्रों में पूरे मोहल्ले को हमें साफ करना है। अच्छा भाई बताओ, अगर मोहल्ले वाले इज्तिमाई नहीं होते तो कितना, एक मोहल्ले में बिजली चली गई तो भाई एक तो मोहल्ले के कुछ लोग उसकी फिक्र करें और एक पूरा मोहल्ला मिलकर फिक्र करें, तो बताओ काम कब आसान होगा? पूरा मोहल्ला मिलकर फिक्र करें तो या कुछ लोग करें तो? अरे भाई बोलो जरा जोर से, क्या पूरा मोहल्ला? मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, एक दो आदमी उसके फिक्र में लग गए और एक पूरा मोहल्ला उसके फिक्र में लग गया, तो भाई बताओ पूरा मोहल्ला लग जाएगा तो काम आसान होगा या मुश्किल होगा? तो ऐसे दीन की इस फिक्र में पूरा मोहल्ला लग जाए उसके लिए हफ्ते में एक मरतबा गश्त करो, पूरे मोहल्ले में गश्त करो और मोहल्ले वालों को जमा करके दीन की बातें सुनाओ। तो अमल तो कौन सा होगा? का अमल तो गश्त का होगा, और ये अमल किसका होगा? का नबियों वाला अमल होगा, कि सारे नबियों ने गश्त का अमल किया, सारे नबियों ने, तो हमसे नबी वाला अमल जिंदा होगा, मोहल्ले में नफे जिंदा हो जाएंगे, एक अपने मोहल्ले में, फिर दूसरा गश्त हफ्ते में अपने अतराफ के मोहल्लों का करो, कि भाई हमारे मोहल्ले में माशाल्लाह काबू में आ गया, हमारे घर में काबू में आया, हमारी मस्जिद हो गई, हमारी गली हो गई, अतराफ के मोहल्ले में भी दीनी है, वो हमारे वहां ना आ जाए, उसके लिए क्या करो? कि अतराफ के मोहल्ले जो बंजर है, हफ्ते में एक मरतबा जिस तरह तुमने अपनी मस्जिद में मेहनत की, ऐसे अतराफ के मोहल्ले जो बंजर है, बंजर आबादी, बंजर मोहल्ले, बंजर बस्तियां, वहां अठवाड़िया में एक मर्तबा जाकर उन पर भी गश्त करो, वो हमारे भाई है, वो हमारे भाई है, हमारे नबी अलैहि सलाम ने अल्लाह हमारे नबी अलैहि सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? कहे नबी जी तुम्हें पूरे मक्के वालों की फिक्र करनी है, वले तुनज़िरा उम्मल कुरा, मक्के वालों की फिक्र करो और मक्के के अतराफ में जो रहते हैं उनके भी फिक्र करो, वमन हौलाहा, मक्के वालों की भी फिक्र करो, मक्के के अतराफ में जो रहते हैं उनके भी फिक्र करो। तो हमें अपनी बस्ती के अतराफ वालों की फिक्र करनी है, अगर हमने उनको छोड़ दिया तो ये तो बड़ा नुकसान के बाद, भाई जिसके पास खाना है वो भूखों को खिलाता है, जिसके पास पानी है वो प्यासों को पिलाता है, भाई जिसके पास दीन है वो दूसरों को दीन सिखाएंगे। इसलिए आप सब नियत करो कि जो भी हमारी मस्जिद दूसरे गश्त में जाएगी हम भी इंशाल्लाह उनका साथ देंगे और हम भी हुजूर की उम्मत में उनकी मुलाकात में जरूर वहां जाएंगे गश्त के लिए। तो भाई जाओगे इंशाल्लाह तो हफ्ते में क्या करना है? दो गश्त करने हैं, एक अपनी मस्जिद का और अपने पड़ोस की मस्जिद का। तो सब नियत करते हो? हम भी करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन नियत करते हैं? माशाल्लाह वाह वाह, कितने काम हो गए बोलो? चार काम हमारा, अपनी जात से एक हुआ, अपने घर का हुआ, अपनी मस्जिद का हुआ, अपने और पड़ोस के मोहल्ले का हुआ, चार काम हो गए। फिर हमारा जिला रह गया, हमारे जिले के गांवड़े और देहात, तो उनके कैसे फिक्र करेंगे? कहां तीन तीन दिन की जमात बना कर जाएंगे महीने में, तो फिर अपने घर से लेकर पूरा जिले का एक एक देहात पूरा हो जाएगा, कभी एक गांवड़े में, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो हुजूर की उम्मत जहां जहां फैली हुई है सबके पास जाएंगे। एक आदमी तीन दिन जाएगा तो तीन बड़े बड़े नफे होंगे, कितने बड़ो? तीन बड़े बड़े। एक तो इसके अंदर जो जागृति आई है, चिल्ले में गया था, चार महीने में गया था, एहसास हो गया था, वो घर में रहते रहते धीमा पड़ गया, जब ये तीन दिन जाएगा फिर चार्जिंग हो जाएगा, इसके अंदर ताजगी आ जाएगी, एक तो नफा ये होगा। दूसरा नफा क्या होगा? कि जब ये तीन दिन जाएगा तो उसके मोहल्ले के 10-15 जवान उसके साथ जाएंगे। ये 10-15 जवान, ये 10-15 जवान नहीं है, ये 10-15 घर है, ये 10-15 खानदान है, ये 10-15 फैमिलियां हैं। जब इनके साथ तीन दिन में जाएंगे ना तो इन सबके अंदर जागृति आएगी, तो मोहल्ले में दीनदारी का वायरिंग हो जाएगा, मोहल्ले में सबके अंदर फिक्रें आ जाएगी। दूसरा नफा ये होगा। जब और तीसरा नफा क्या होगा? क्या तीसरा नफा ये होगा कि जिस गांवड़े में ये जाएगा उस गांवड़े में हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं वहां से नकद जमात बनानी है तीन दिन की, कम से कम नकद जमात, वहां मस्जिदवार जमात, तो ये चैन से भी बैठेगा नहीं और चैन से बैठने भी नहीं देगा, वहां से नकद जमात बनाएगा, वहां मस्जिदवार जमात बनाएगा, तो गांवड़े में हरकत आएगी, उस देहात में भी हरकत आ जाएगी। तो इसके एक के खड़े होने से मोहल्ले के 15 जवान खड़े होंगे, और इस एक के खड़े होने से अतराफ जिस गांवड़े में गए वहां माशाल्लाह एक अच्छी फिजा बनेगी। इसलिए शैतान क्या कोशिश करता है कि ऐसे लोग जो जमात लेकर जा सकते हैं, जिम्मेदार किस्म के आदमी, उन्हीं को वो सुस्ती करवाता है, वो सुस्त कर देता है कि मैं इस महीने में तीन दिन नहीं लगा। क्यों? कि अगर ये लगाएगा तो खुद जागरूक हो जाएगा, भाई शेर का बच्चा है वो जाग जाएगा तो शेर ही शेर है, शेर का बच्चा तो भाई शेर ही शेर है, वो जब वो सोया हुआ है जागेगा तो फिर शेर का काम करेगा, तो इसको सोया ही पड़े रहने दो। तो शैतान इसको थपकिया देता है, उजर में लगा देता है, क्योंकि ये जाग गया तो ये हजारों को जगाएगा, मोहल्ले से नकद जमात बनाएगा, फिर जिस देहातों में जाएगा वहां से नकद जमात बनाएगा। तो ऐसा करो किसी को सोते रहने दो ताकि न रहे बांस और न बजे, अरे बोलो न रहे बांस और न बजे बांसुड़ी, कि इसी को सुना देता है। इसलिए हमारे हर वो जिम्मेदार जो जमाते बना सकते हैं वो तो तय करें कि हम इंशाल्लाह बांस भी लाएंगे, बांसुड़ी बनाएंगे और पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजाएंगे। कैसा करेंगे बोलो? पूरी दुनिया में बांसुड़ी बजाएंगे, और हम ऐसे ही नहीं मर जाएंगे कि दुनिया में ऐसे मर गए कि किसी को पता भी नहीं चला, मर गया मरदूद नफा दिया नदरूद, ऐसे थोड़ी मर जाएंगे। कैसे मरेंगे? कैसे मरेंगे? मौलाना उमर साहब फरमाते थे हम लोगों को कमा कर मरेंगे। क्या करके मरेंगे बोलो? मौलाना उमर साहब फरमाते थे हम बांझ नहीं मरेंगे। बांझ कैसी औरत को कहते हैं? कैसी औरत कि जो अकेली थी और अकेली मर गई, कोई बच्चा ही उसको तो नहीं हुआ, और हम हजारों लोगों को अपने नामा अमल में लेकर जाएंगे। तो यहाँ भी गश्त किया, यहाँ भी गश्त किया, यहाँ भी गश्त किया, यहाँ भी 2.5 घंटे लगाए, और यहाँ यहाँ 3 दिन गए, यहाँ चिल्लो में गए, यहाँ 4 दिन में गए। कल कयामत के दिन जितनों की मेहनत, जितने लोग हमारी मेहनत से आए वो हमारे नामा अमल में तोले जाएंगे। हमारा नामा अमल बड़ा वजनदार होगा। मरने के बाद जो लोगों पर मेहनत करके जाते हैं उनका दफ्तर बंद नहीं होता, बाकी आदमी मरता ही दफ्तर बंद, एक सुभान अल्लाह का मोहताज। लेकिन जो मेहनत करता है उनका दफ्तर क्यों बंद नहीं होता? कि वो यहाँ भी इनको नमाजी बना कर गया, उनको अमल वाला बना कर, इनको इनको इनको, वो जितना करते रहेंगे वो सब इसके नामाया माल में आएंगे। इसलिए हमें मरते हुए दफ्तर बंद करके नहीं जाना, बल्कि खुला छोड़ कर जाएंगे। इसलिए क्या करना है कि 3-3 दिन महीने में पाबंदी से लगाने हैं। हर महीने जब पाबंदी से हम लगाएंगे ना, तो हम अपनी बस्तियों में भी जागरूक लाने के जरिया बनेंगे और अतराफ के देहातों में भी। इसलिए सब नियत करो पाबंदी से हम 3 दिन भी लगाएंगे। कौन कौन नियत करता है पाबंदी से हम लगाएंगे? माशाल्लाह, अपना सिला पूरा हो गया, अपना घर हो गया, अपनी मस्जिद हो गई, हमारा मोहल्ला हो गया, अतराफ का मोहल्ला हो गया, और हमारा गामड़े हो गए, हमारा सूबा रह गया, हमारा मुल्क रह गया और पूरी दुनिया रह गई। इसके लिए हमारे पास चिल्ले हैं, उसके लिए हमारे पास 4-4 महीने हैं, उसके लिए हमारे पास बेरून के सफर हैं। तो इंशाल्लाह साल में चिल्ला जाएंगे, साल में 4-4 महीने जाएंगे, कभी बिहार, कभी आसाम, कभी बंगाल, कभी उड़ीसा, कभी यहाँ, कभी वहां। कयामत के दिन सारे हमारे झंडे के नीचे, कयामत के दिन सब हमारे झंडे के नीचे हम पूरी दुनिया को लेकर जाएंगे, और फिर अल्लाह हिम्मत देगा पूरी दुनिया में जाएंगे। और कैसे मरना है? मौलाना उमर साहब फरमाते थे करते करते मरना है। कैसे मरेंगे बोलो? अल्लाह के नबी का काम करते करते मरना है, और मरते मरते करना है। मरते मरते भी काम करके जाएंगे और करते करते मरेंगे, ऐसे ही नहीं मर जाएंगे। कैसे? मर गया मर्दूद नफा दिया नजर, ऐसे थोड़ी काम। तो पूरी दुनिया को जगा कर जाएंगे, खुद भी जागेंगे और पूरी दुनिया को इंशाल्लाह जगाएंगे। कौन कौन नियत करता है पूरी दुनिया को जगाने की मेहनत करेंगे? अल्लाह तो फिर अब इसलिए नियत करो। क्या नियत करो? अभी ये 5 काम करने की तुम्हें नियत करनी है। इसलिए कि नियत अमल की इमाम है। जो आदमी नियत करेगा अल्लाह उसको अमल की तौफीक देंगे। किस किताबों में आता है कि आदमी को अल्लाह वो देंगे जो उसकी नियत में होगा। नियत नहीं करेगा तो अमल भी नहीं होगा। भाई एक आदमी ने सुबह से शाम तक भूखा रहा लेकिन नियत नहीं की, तो भाई रोजे का सवाब मिलेगा? अरे बोलो भाई, रोजे का सवाब मिलेगा? क्यों? क्यों? नियत नहीं की। एक आदमी बैतुल्ला पहुंच गया लेकिन हज की नियत नहीं की, तो हज गिना जाएगा? क्यों? अरे बोलो भाई क्यों? एक आदमी ने सदका खैरात कर दिया लेकिन जकात अदा करने की नियत नहीं की, तो जकात अदा हो जाएगी? क्यों? नियत। अमल का मदार नियतों पर है, तो शैतान हमको नियत नहीं करने देता। तो आज तो सब तय कर लो, हम नियत करके ही जाएंगे। तो सब नियत करते हो? करना आपको अपनी जगहों पर है, लेकिन नियत आज करनी है। इसके लिए क्या करना है? मैं एक एक बस्ती वाले को उठाऊंगा, वो बस्ती वाले उठे, अपने साथियों के साथ बैठे और अपनी मस्जिद की सतह के साथ बैठे, फिर नियत करें हम मस्जिद में तालीम में बैठेंगे। घर की तालीम कब करोगे? 2.5 घंटे कब दोगे? 3 दिन कब जाओगे? आज उसकी नियत करके जाओ। एक आदमी भी बाहर ना जाए। क्यों? कि शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, वो कोशिश ये करेगा कि ये नियत नहीं करना चाहिए, ये करेगा काम भी करेगा, तो इसके पैर ही काट डालो, नियत ही न करने दो ताकि काम का भी ना बने। तो वो तो तुम्हें उचकने के लिए आया है, तो आप उसके हाथ में उचक जाओगे या कोशिश करोगे कि उसके हाथ में नहीं उचकना, यही बैठे रहना है? भाई उसके हाथ में तो नहीं चले जाओगे? कौन कौन उसके हाथ में चला जाएगा जरा बताओ? कौन कौन उसके साथ चला जाएगा? शैतान के साथ कौन कौन चला जाएगा जरा बताओ? अच्छा माशाल्लाह, ये तो कह रहा है कोई भी नहीं जाएगा। तो अब ऐसा करो, एक एक बस्ती वालों को मैं उठाता हूँ। अच्छा भाई वापी वाले जरा खड़े हो जाओ, इस बस्ती इस पिंडाल में जो जो वापी वाले हैं सब खड़े हो जाओ। वापी वापी खाली वापी, सिर्फ वापी वाले सब मेरे पास आ जाओ। यहाँ देखो इस कोने में आ जाओ, इस कोने में चले जाओ, सब जाओ, सब वापी वाले यहाँ चले जाओ। देखो शैतान के साथ कोई बाहर ना चला जाए। भाई शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, अभी लेने आएगा। ये नियत ही नहीं करनी चाहिए ताकि बर्बाद हो जाए। सब वापी वाले यहाँ जाओ, जल्दी जल्दी चलो, अभी मुझे दूसरों को भी खड़ा करना है। भाई वापी वाले इनको ले लो, भाई तुम लोग जरा आगे आ जाओ। भाई जल्दी चलना शुरू करो, खड़े ना रहो। भाई जल्दी चलना शुरू करो, सिर्फ वापी वापी और उसका अतराफ का सारा देहात। भाई वहां को है वापी वाले? भाई वापी के लोग जो है उनको बिठा दो। भाई जल्दी जल्दी जाओ, भाई जल्दी जल्दी, माशाल्लाह वाह 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 वाह, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा भाई बलसाड़, बलसाड़ शहर और उसका अतराफ, भाई वो कहाँ है? जरा खड़े हो जाओ, बलसाड़ वाले जरा खड़े हो जाओ, कहाँ है भाई? भाई बलसाड़, भाई तुम इस कोने में चले जाओ, बलसाड़ वाले उस कोने में चले जाओ।
ओ भाई वलसाड़ वालों, तुम भी तो तीनों वलसाड़ वाले हो, आप तीनों भी वलसाड़ वाले हो ना, वलसाड़ वालों के साथ बैठो भाई। वलसाड़ और उसका पूरा अतरास भाई, इस कोने में आ जाओ, देखो हाई एल फला की तरफ। वलसाड़ के साथ कौन से गांव है? अतरास, बलसाड़, पालडी, अतुल और डोंगरी, अड़गाम, ये सब उस तरफ चले जाओ भाई, ये सारे उनके साथ चले जाओ। बलसाड़ हल्का, पूरा हल्का भाई, फिर मस्जिद की सतह पर बैठो। अच्छा भाई तीसरा कौन सा है भाई? दमन का है, दमन जरा हाथ उठाओ, दमन वाले का है, दमन। देखो शरीफ भाई के पास सब दमन वाले, थोड़े शरीफ भाई थोड़े यूं हट जाओ, थोड़े यूं हट जाओ, दमन वाले उनके पास, शरीफ भाई के पास चले जाओ, सब दमन वाले। भाई चौथा कौन है भाई? बैठ जाओ, खड़े क्यों है भाई? वापी वाले बैठ जाओ, माशाल्लाह भाई बैठ जाओ भाई, बलसाड़ वालों बैठ जाओ, वापी वालों बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, बड़ी नीयत के साथ खड़े हुए हो, अल्लाह आपके जज़्बात को कबूल कर। भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, देखो एक भी खड़ा ना रहे, माशाल्लाह देखो सब बैठ गए, थोड़े ही खड़े। भाई बलसाड़ वाले बैठ जाओ, दमन वाले बैठ जाओ। भाई चौथा हल्का बोलो भाई, धर्मपुर का है, धर्मपुर भाई, धर्मपुर भाई सर हाथ उठाओ, देखो बीच में धर्मपुर वालों ने हाथ उठाया है, भाई सर हाथ उठाओ धर्मपुर वाले, देखो ये धर्मपुर वाले बीच में आ जाओ, चलो इनके पास आ जाओ। भाई पांचवा भाई, नाना पोंडा कहा है? नाना पोंडा देखो भाई हाथ उठा कर रखो, देखो नाना पोंडा वाले हाथ उठाए, भाई नाना पोंडा वाले यहाँ जाओ इनके पास, देखो हाथ उठाए वहां जाओ, चलो वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा भाई और भाई देखो माशाल्लाह ये पांचों हल्के लग गए, अब बैठ जाओ, मस्जिद के सतह से बैठो, मस्जिद के हिसाब से बैठो और अपने असाइन करो। भाई ये बीच में जो खाली बैठे हैं कौन से वाले हैं? ये पांच में से किसी ना किसी वाले होंगे, हल्कों में चले जाओ, अपने अपने हल्कों में। भाई ये कौन से हैं? धर्मपुर माशाल्लाह भाई, असाइन करो भाई, सबको पर्चे दे दो,
गिलास बिठाएगा पहले से
भाई, बैठ जाओ। ये 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 कौन है ये जो खड़े हैं? नाना पोंडा वाले। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, नाना पोंडा वाले बैठ जाओ, माशाल्लाह वाह 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 वाह, बैठ जाओ। भाई बैठे भाई, इनको पर्चा दे दो भाई, ये बलसाड़ा वालों को बिठा दो भाई, ये बलसाड़ा हल्का बैठा नहीं अभी तक,
महंगे वाला
भाई बहुत देर हो गई भाई, बैठ जाओ भाई, बलसाड़ा वालों बैठ जाओ। भाई ये जो बीच में बैठे हैं ये कहाँ वाले हैं? ये सब बीच में बैठे हैं ये कहाँ वाले हैं भाई? ये आप कहाँ वालों, कहाँ के हो?
नाना पोंडा
जमात है। अच्छा
ना तो डबल भरा जगह,
माशाल्लाह भाई। वो पीछे वाले सब कौन है भाई? आप लोग पांचों और छह छह आदमी जमात है आपकी? जमात है, चलो ठीक।
मैं हरुण भाई,
चले जाओ
भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ।